ओम शांति। एक कहानी से आज का विषय शुरू किया जाता है। चार दोस्त थे, बहुत आपस में मित्रता थी, एक गांव में रहते थे। उस गांव में कोई प्रोग्रेस के ज्यादा साधन नहीं थे, तो उन चार मित्रों ने सोचा कि भाई यहां पर तो जीवन यापन की बहुत ज्यादा संभावनाएं नहीं है, चलो हम कहीं जा करके कुछ ऐसा ट्रेड सीख के आए, कलाएं सीख करके आए कि हमारा जीवन यापन ठीक रीति से संपन्न हो सके। बहुत पुराने जमाने की बात है। तो उन चारों ने निश्चय किया कि हम चार अलग अलग दिशाओं में जाएंगे और ये इसका ट्रेड कोई भी जीवन यापन के लिए सीखेंगे। और उसके बाद उन्होंने कोई डेट फिक्स करी एक साल के बाद कि यहीं पर इसी स्थान पर इतने बजे हम लोग मिलेंगे। ठीक है, चारों विदा हो गए और फिर एक वर्ष बाद चारों आपस में आके वहीं पर मिले। बहुत खुशी थी क्योंकि एक साल बाद चार पुराने मित्र मिल रहे थे और आपस में बातें करते करते बस गांव के जो खेत की पगडंडी थी वहां से कुछ जा रहे थे आगे, तो जाते जाते उन्हें रास्ते में कुछ हड्डियां पड़ी हुई मिली। तो उन हड्डियों को देखते ही एक मित्र को ख्याल आया, अरे मैंने ऐसी कला सीखी है, ऐसे मंत्र यापन में कर सकता हूं, मंत्र का उच्चारण, ये हड्डियां आपस में जुड़ जाएंगी और किस व्यक्ति पशु पक्षी की है उसका रूप बन जाएगा। तो उसने कुछ मंत्र वगैरह पढ़े, वो हड्डियां आपस में जुड़ गई और एक पशु का सा रूप हो गया। दूसरे मित्र ने कहा कि अरे मैंने और कला सीखी है, इसके आगे मैं जिस पशु की ये है उसके मांस और खून का उसमें संचार कर सकता हूं। उसने कुछ मंत्र विद्या पढ़ी और उसके जो ढांचा था हड्डी का उसके ऊपर मांस आ गया और जो है त्वचा खाल वगैरह आ गई और वो एक शेर का सा रूप हो गया। और लेकिन उसमें प्राण नहीं थे। तीसरे ने कहा कि मैंने ऐसा विद्या सीखी है कि मैं इसमें प्राणों का संचार कर सकता हूं। आप दोनों ने तो अपनी कला दिखा दी, अब मैं अपनी कला दिखाता हूं। तो वो मंत्र शुरू करने ही वाला था कि चौथे मित्र ने कहा कि अरे मित्र तुम क्या करने जा रहे हो, जरा सोचो तो सही। अगर इन दो की उसने कहा कि इन दो मेरे मित्रों की विद्या सफल हो गई है और मैं भी अपनी विद्या को टेस्ट करने जा रहा हूं कि मैंने कितनी सीखी है और मुझे भी विश्वास है कि सफल होगा। तो उसने कहा वो तो ठीक है, चौथे ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन उसका परिणाम क्या हो सकता है, सोचा है आपने? कह रहे परिणाम जो होगा लेकिन मेरी विद्या तो टेस्ट हो जाएगी और मैं तो चाहता हूं। तो उसने कहा कि भाई ठहरो, उसने समझाने की कोशिश करी, देखो अगर ये शेर जीवित हो गया तो क्या होगा, हम सबका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। तो सब नहीं माने, दो ने तो टेस्ट कर लिया था, तीसरा बहुत उत्सुक था, आतुर था अपनी विद्या को टेस्ट करने के लिए। तो उसने उसके अंदर वहां पर फिर मंत्र पढ़े शुरू किया। तो चौथे ने कहा अच्छा भाई आप नहीं मानते हो तो मैं तो यहां से दूर जाता हूं। वो थोड़ा दूर गया और एक पेड़ के ऊपर चढ़ करके देखने लगा। तीसरे मित्र ने थोड़ा मंत्र वगैरह पढ़े, शेर के अंदर उसके अंदर प्राणों का संचार हो गया और वो उठकर खड़ा हो गया एकदम। क्या हुआ होगा उसके आगे? बस आप समझ सकते हैं। तो चौथे ने देखा, उसे अंदर दुख भी हो रहा था कि तीन मित्रों के प्राण जा रहे हैं, लेकिन उसने कहा मैंने तो भाई पूरी कोशिश कर ली और इस प्रकार से ये कहानी का दुखद अंत हो गया। तो इस कहानी से क्या शिक्षा, आज के विषय के अनुरूप हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ये जीवन जीने की कला। तो जो हम लोग ट्रेड सीखते हैं, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, जो कुछ भी हो, वो सब तो ठीक है, जीवन यापन के लिए जरूरी भी है और आगे बढ़ने के लिए, लेकिन साथ साथ एक और चीज होनी चाहिए। कौन सी, जिसे क्या कहते हैं, कॉमन सेंस या जनरल, कि जीवन के अंदर जैसी परिस्थिति हो उस परिस्थिति के अनुरूप हमें उसी प्रकार विचार करना चाहिए जैसा परिस्थिति डिमांड करती है। तो इसीलिए ऐसा जब हुआ, देखा कहानी के से, तो हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम जीवन जीने की क्या कला है उसको विषय विश्व साथ साथ जीवन के साथ हम टेस्ट करते चले। तो जीवन क्या है, लाइफ क्या है, बहुत परिभाषाएं बहुतों ने की है, लोगों ने जीवन एक बगीचा है, सुगंध लेते चलो, रास्ता है, यात्रा है, करते चलो, आदि आदि। जो जैसा व्यक्ति था उसने जीवन को उसी रूप में देखा, जो आशावादी था उसने आशावादी के रूप में देखा, जो निराशावादी था उसने उस रूप में। तो लेकिन सभी परिभाषाएं कहीं ना कहीं कुछ अधूरी रह जाती हैं, और जीवन की एक परिभाषा वो एक संपूर्ण रीति से खरी उतरती है। जीवन अर्थात लाइफ, कितने शब्दों का ये लेटर है, ये शब्द है 4, LIFE। तो जीवन के दो पहलू इसमें हमें, एक जीवन का है आंतरिक पहलू, अंदर का पहलू, और दूसरा है L, जैसे LI माने लुक इंटरनली, एक जीवन का बाह्य पक्ष है FE फॉरवर्ड एक्सटर्नली। हर एक कोई जीवन में आगे बढ़ना चाहता है और जीवन में आगे ही आगे उन्नति को प्राप्त करना चाहता है, धन कमाना चाहता है, मकान चाहता है, प्रमोशन चाहता है, आदि आदि। तो ये जीवन के दो मुख्य पहलू हैं, एक आंतरिक पक्ष, एक बाह्य पक्ष। तो बाह्य पक्ष के बारे में तो हम सब अच्छी तरह परिचित हैं एक दूसरे से, कि भाई जिस क्षेत्र में भी हम काम करते हैं वो उसके अंदर डॉक्टर, इंजीनियर, चाहे कोई कैसा भी हो, उस पक्ष को हम देखते चले। लेकिन ये आंतरिक पक्ष भी बहुत जरूरी है। 24 घंटे में हम देखें तो हम लगभग 23 घंटे अपने बाह्य पक्ष में ही रहते हैं, खाना पीना, रहना, नौकरी धंधा आदि आदि, बच्चों को पढ़ाना, वो जरूरी है, वो सब भी करना है। लेकिन आंतरिक पक्ष इसलिए जरूरी है कि कभी जीवन के अंदर कोई समस्या आए, प्रॉब्लम आए, स्ट्रेस आए, टेंशन आए, डिप्रेशन हो, तो उस समय हम उस परिस्थिति से कैसे बाहर निकले। जैसे फायर ब्रिगेड होती है, अब साल में भाई 365 दिन में हो सकता है 360 दिन उसकी जरूरत ही ना पड़े, लेकिन जब कभी एकदम आग लग गई और जब जरूरत पड़ती है तो उसको पहले से ही तैयार रखते हैं कि जिससे कि वो तैयार रहे, तुरंत आग बुझाई जा सके। ऐसे ही हमें ये, कई लोग बोलते हैं अरे क्या जरूरत है कोई भगवान को याद करने, मेडिटेशन की, बस पैसा ही सब कुछ है। ठीक है, पैसा जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन मनुष्य को ये स्थूल प्राणी नहीं है। आज आपने सुना होगा ना, सुबह सब पहला लेक्चर कौन सा था, सुबह 6:30 बजे वाला, आप सब कौन है, आत्मा है, आत्मा ने ये शरीर लिया है। तो जब आत्मा है तो जीवन के अंदर अनेक अनेक प्रॉब्लम, समस्याएं कभी ना कभी आती है, कभी तन की समस्या आती है, बीमारी वगैरह हो जाती है, कभी धन की समस्या आती है परिवार के अंदर उसकी, कभी संबंधों में कटुता आती है, तनाव हो जाता है तो स्ट्रेस टेंशन हो जाता है, कभी कोई लाइफ के अंदर सामाजिक समस्या, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई। तो जीवन के अंदर जो अनेक अनेक परिस्थितियां आती हैं उनका सामना करने के लिए एक ये भी आवश्यक है। यहां पर एक प्रोफेसर आए थे, बड़ा जीवन की एक परिभाषा उन्होंने एजुकेशन के रूप से की। क्या कहा उन्होंने? कहा कि जिंदगी है एक सेंटेंस, जिंदगी है एक सेंटेंस, इसे खुद ही समझो। जवानी डैश बुढ़ापा कॉमा, मौत को फुल स्टॉप समझो। समझा ना? जिंदगी एक सेंटेंस है, सेंटेंस में क्या होता है? डैश कॉमा फुल स्टॉप आदि। तो जवानी डैश तनी हुई, बुढ़ापा कॉमा, कॉमा की तरह कमर भी कई बार झुक जाती है, कॉमा जैसा बन जाता है, और मौत को फुल स्टॉप समझो। तो इस तरह जीवन की अनेक अनेक परिभाषाएं की हैं, लेकिन ये जीवन के ये दो मुख्य पहलू हैं, इनको अगर ध्यान में रखते हुए चलते हैं तो जीवन जीने की एक ये कला है। अभी आप गिनते जाइएगा जीवन जीने की, आध्यात्मिक पक्ष भी हमारा थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। फिर उसके साथ साथ और क्या होता है? मेज है ना, ये मेज होती है, तो जीवन भी एक मेज के समान है। लाइफ मेज में कितनी टांगे होती हैं? चार टांग है। तो इसी जीवन के भी मुख्य चार पहलू हैं, चार पक्ष। कौन सा पक्ष है चार? एक है फिजिकल, भौतिक। ये देह हमारी है इसीलिए, और ये बचपन से ही हम जानते हैं, जब से पैदा हुए हैं, भाई इसको खिलाना है पिलाना है, इसको बीमार हो जाए दवाई देनी है, ये सोने का समय है, ये सब स्थूल हम जानते हैं। ये भौतिक पक्ष है जीवन का। एक भौतिक पक्ष के साथ साथ दूसरा पक्ष है एक, कौन सा? मानसिक पक्ष, मेंटल। उसका डेवलपमेंट बच्चा भी जब दो तीन साल चार साल हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसे भी स्कूल में भेजते हैं किंडरगार्टन से लेकर के आगे, कि उसका भी मेंटल डेवलपमेंट होता रहे। मानसिक रीति से, भौतिक रीति से तो शरीर का होता है, लेकिन उसके साथ साथ मानसिक डेवलपमेंट वो भी आवश्यक है, वो चलता रहे। फिर साथ ही साथ एक तीसरा पक्ष और है, कौन सा? सामाजिक पक्ष, सोशल। जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के अंदर उसके क्या नियम है, मर्यादाएं हैं, माता पिता भाई बहन संबंध आदि, उनके साथ क्या व्यवहार करना है। तो ये तीन टांगे तो हमारे जीवन रूपी मेज की पक्की होती जाती है, हम सब जानते हैं। लेकिन होता क्या है, चौथी टांग। कौन सी है चौथी टांग? आध्यात्मिक पक्ष, स्पिरिचुअल। वो टांग हमारी छोटी रह जाती है मेज की। अगर कोई मेज में तीन टांग बराबर हो और चौथी टांग बिल्कुल छोटी हो तो क्या होगा? अनस्टेबल होगी, मेज गिर जाएगी जो चीज रखेंगे। तो ऐसे ही हमारा जीवन रूपी मेज की भी ना ये चौथी टांग थोड़ी काफी छोटी है। और हम सब सोचते हैं चलो भाई जब रिटायर हो जाएंगे, बच्चों की शादी हो जाएगी, फ्री हो जाएंगे, तब कुछ धर्म कर्म की बात करेंगे, अध्यात्म की बात। अभी से हमें क्या करनी, अभी तो हम यंग हैं, हमें परिवार की जिम्मेवारियां हैं। ठीक है, परिवार की जिम्मेवारियां हैं वो भी करो, लेकिन साथ ही साथ जैसे आपको बताया आध्यात्मिक पक्ष, जीवन का जैसे फायर ब्रिगेड होती है, उसे तैयार रहना पड़ता है। अब अस्पताल होते हैं, अब रोज रोज अस्पताल में कोई थोड़ी जाता है डॉक्टर या उसके स्टाफ के सिवाय, व्यक्ति साधारण होता है। जब कभी ऐसी बीमारी आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया कोई बात, तब उसे वहां जाना पड़ता है, इसीलिए उसको तैयार रखते हैं हॉस्पिटल भी। ऐसे ही जीवन का ये आध्यात्मिक पक्ष भी हमें बहुत आवश्यक है, शक्ति प्रदान करता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं, विपरीत परिस्थितियां, हम अपने को संभाल नहीं पाते हैं, इसलिए ऐसी विपरीत परिस्थितियों के लिए आवश्यक यह है जीवन की यह चौथी टांग भी बराबर रहे। तो इसीलिए, क्योंकि कई बात होती हैं और जीवन ये कहा गया है ना, तो पहले जमाने में किसी ने भी कहा जीवन ये चक्की है, और कबीरदास भी बोल के गए हैं कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, और आगे क्या है, दो पार्ट कौन से हैं? वो तो चक्की का बोल दिया, लेकिन जीवन के भी ये दो पार्ट हैं। कौन से? एक है भूतकाल, एक है भविष्यकाल। इसमें कोई साबुत बचता नहीं है। या तो मनुष्य सोचता रहेगा भूतकाल की बात, अरे ये क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, भूतकाल का चिंतन करता रहेगा। या मनुष्य भविष्य की चिंता करता रहेगा, अरे अभी तो मेरे बच्ची की लड़की की शादी बाकी है, अभी तो मकान बनाना बाकी है, अभी तो ये करना बाकी है, और भविष्य की चिंता। तो भूतकाल का चिंतन, भविष्य की चिंता, ये जीवन के दो पार्ट है। मनुष्य इसमें पिसता रहता है, क्या करे फिर बेचारा, क्या करना चाहिए? चक्की में और कुछ भी होता है? ये दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, बीच में खूंट पकड़कर जो रहा उसे पीस सका ना कोई। जो बीच में ना अनाज डाला जाता है ना, वो थोड़ा साबुत रह जाता है, वो पिसता नहीं है, बाकी सब पिस जाता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं अगर हम पिसे ना, परिस्थितियां आए, परिस्थितियों में भी हम साबुत बन के निकले, तो परिस्थितियां हमें हरा ना सके। तो क्या करना चाहिए? जो वो है खूंट, वो क्या चीज है? भूतकाल हो गया, भविष्यकाल हो गया, और क्या रह गया? वर्तमान काल। तो वो जो है वर्तमान काल है, जो व्यक्ति वर्तमान में जीना जानता है ना, वो कभी जीवन में हार नहीं सकता। तो इसीलिए इसको वर्तमान को क्या कहा जाता है अंग्रेज में? कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट कहा गया है, प्रेजेंट माने गिफ्ट। इसीलिए जीवन हमारा जो है ना, भगवान ने दिया है, प्रेजेंट में हम जिए, गिफ्ट है ये हमारा। तो इसीलिए ये गिफ्ट, जो जीना जानता है वो कभी जीवन में दुखी नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि अगर हम वर्तमान को अच्छा कर लेंगे ना, आज आप यहां हैं, बहुत खुश हैं, आनंद में हैं, वर्तमान अच्छा कर लिया, कल की तारीख में ये आज का वर्तमान क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। आज जो प्रेजेंट है वो कल पास्ट हो जाएगा। तो वर्तमान अच्छा कर लिया तो पास्ट भी हमारा अच्छा हो गया, और वर्तमान प्रेजेंट एंड पास्ट अच्छे हो गए, भूतकाल और वर्तमान काल अच्छे हो गए, तो भविष्य तो अच्छा होना पक्का है, होना ही होना है, क्योंकि इनके आधार पर ही, आज वर्तमान के आधार पर ही भविष्य चलता है, कल के आधार पर, भूतकाल के आधार पर आज वर्तमान है, वर्तमान के आधार पर भविष्य होगा। तो भूतकाल और वर्तमान काल को दोनों अच्छा कर लेना, ये जीवन जीने की ये एक और कला है, दूसरी कला है, और इस कारण से इसमें अपने को ये देखते चलना है। ठीक है, ये जीवन जीने की कला, इसमें आप एक एक करके इन कलाओं को देखते चलिए, और क्या होगा, और क्या है इसमें करना है। ये जीवन जो आपने देखा ना, चार हा? फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, तो ये है क्या? कई बार क्या है कि हम चाहते तो हैं हमारा भूतकाल को हम भूल जाएं, कोई ऐसी घटना हो गई है जो हम नहीं चाहते हमें बार बार याद आती रहे, भूल जाए, भूल नहीं सकते ना चाहते भी। कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि हम कोशिश करते हैं, कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि अक्सर करके एक बात है कि हम एक बात की क्लैरिटी हमारे जीवन में नहीं है। क्या? हम माइंड, ब्रेन, इन सब को मिला देते हैं, मन, बुद्धि, आत्मा, दिमाग, ये सब एक है। नहीं, गौर से इसे देखिएगा कि कैसे ये चीजें अलग अलग हैं, और ये चीज जितनी अलग होती हैं उतना हमारे माइंड में और क्लैरिटी होती जाएगी। देखिए, शरीर की ना ये दो चीज है, एक है हार्ट, एक है ब्रेन। हार्ट यहां होता है, ब्रेन यहां होता है, ये शरीर की दो मुख्य चीजें हैं, हार्ट और ब्रेन, ये बॉडी का। और आप सबने आज सुबह क्लास में सुना ही है कि हम सब कौन हैं? आत्मा। आत्मा ने ये शरीर लिया है। तो जैसे ये शरीर के दो आवश्यक चीज हैं, ऐसे आत्मा की भी दो आवश्यक चीजें हैं। कौन सी? आज आपने सुनी, दो सुनी थी, तीन सुनी थी। हाँ, कौन कौन सी? हाँ, मन, बुद्धि और संस्कार, राइट। ये तीन चीज जो है ना, तो ये इसके जो दो अंग है आत्मा के मुख्य, मन और बुद्धि, ये आत्मा के दो अंग। तो संस्कार भी है। मन क्या है? मन का काम है, क्या काम है मन का? सोचना। आज सुना ना आपने, मन का काम है सोचना। जैसे कोई पानी है, पानी में आप एक पत्थर डाल दो तो क्या होगा? लहरें पैदा होने लगेंगी। लहरें पैदा होंगी और बस, पहले जब तक पानी स्थिर था, पत्थर नहीं डाला था, हम अपनी छवि भी उसमें अच्छी तरह देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपने पत्थर डाला, लहरें पैदा हुई, अपनी छवि स्पष्ट दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। तो मन का काम है सोचना, विचार करना। बहुत विचार मन में आते हैं। आज सुबह आपको बताया गया होगा ना, कितने विचार आते हैं, कितने आते हैं? सारा दिन तो आते हैं, 10, 20, 50, 100, 1,00,000, 2,00,000, कितने आते हैं? हैं? थोड़ा कम करो। ऑन एन एवरेज, याद रखने के लिए आप समझो कि हर 2 सेकंड में एक विचार आता है। 2 सेकंड में एक विचार, तो 1 मिनट में कितने विचार हो गए? 30 विचार हो गए। 1 मिनट में 30 विचार हो गए, तो कैलकुलेट करोगे तो सारा दिन के अंदर कितने विचार आ जाते हैं? लगभग 25-30 हजार विचार आ जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, मन सोच सकता है, उसे हैंडल कर सकता है। तो जब इतने विचार आते हैं, फिर बुद्धि का काम आता है। मन का काम है सोचना। आपको यहां निमंत्रण मिला होगा 2-4-6 महीने पहले कि भाई इन तारीख में यहां माउंट आबू में शिविर है, चलो। तो आप में से कईयों ने सोचा होगा, हाँ, सभी बहुतों को निमंत्रण दिया होगा हमारे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के भाई बहनों ने। आप लोगों ने निर्णय लिया, तो ये निर्णय लेने का काम ये है बुद्धि का। आज आपको बताया गया तरह सही क्या है, गलत क्या है, अभी जाए करें ना करें। तो आपने निर्णय लिया, आ जाए चलते हैं, आप आ गए। कईयों ने निर्णय लिया होगा, नहीं हमारा ये जरूरी काम है, वहां पर रहना जरूरी है, वो नहीं आए। तो बुद्धि का काम है निर्णय लेना। तो मन, बुद्धि और फिर तीसरा क्या है? संस्कार। जो हम कर्म करते हैं शरीर से, वो संस्कार रूप में होते हैं। तो ये फिर आपने टिकट रिजर्व कराई, यहां पर आ गए, ये कर्म किया, इसके आधार पे संस्कार बनते हैं। तो ये काम जो है, ये आत्मा, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सोल, SOUL, इसका भी एक बाहुअर्थ है। क्या इसका अर्थ है? SOU, सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लव, आत्मा प्रेम स्वरूप है। और ये प्रेम स्वरूप आत्मा, ये जो कार्य करती है, वो ही वास्तव में जीवन का आधार बन जाता है। जब प्रेम होता है, एक होता है प्रेम, और फिर एक होता है जैसे राग, एक होता है द्वेष। तो जब अति प्रेम हो जाता है, बहुत शरीर से कोई, वो विकार का कारण बन जाता है। जब अपना अपने प्रति अथा प्रेम, दूसरे के प्रति प्रेम, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह का कारण बन गया। अपने प्रति हो, मैं धनवान हूं, रूपवान हूं, चरित्रवान हूं, मैं ऐसा हूं, अहंकार का कारण बन जाता है। तो इस तरीके से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि का मुख्य कारण ये प्रेम है। इसीलिए उसका, प्रेम का विकृत रूप जो, और लेकिन सही रूप कौन सा है? अमीर खुसरो एक बहुत होके गए हैं, बढ़िया, उन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि खुसरो दरिया प्रेम का, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी जाकी धार, जो तैरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। ये प्रेम के दरिया की बात है। यूजुअली जो तैरता है पार हो जाता है, लेकिन ये भगवान का, आत्मा का, प्रेम का दरिया जो है ना, जो इसमें डूब गया, वो जिंदगी के भवसागर से पार हो जाता है। तो भाव क्या है कहने का कि जीवन के अंदर ये प्रेम बहुत एक ऐसा स्वरूप है कि मनुष्य तो क्या पशु पक्षी जीव जंतु भी ये प्रेम का आधार ले सकते हैं। आज कैसे यह वीडियो है आपके तो माइंड एक्ट्स लाइक ए प्रोग्रामर। माइंड मन कैसे एक प्रोग्रामर की तरह है और ये बताया गया है कि मन बुद्धि संस्कार ये जो तीन हैं इनकी तुलना कंप्यूटर से कैसा की गई है। मन ये एक प्रोग्रामर की तरह है, प्रोग्रामर कंप्यूटर को प्रोग्राम करता है और बुद्धि जो है ब्रेन मन जहां कार्य करता है ब्रेन इस शरीर का जो एक अंग है ये ब्रेन है कंप्यूटर और शरीर जो है ये है एक रोबोट की तरह देख रहे हैं। तो मन रूपी प्रोग्रामर जब ब्रेन को प्रोग्राम करता है और ब्रेन के द्वारा वो सारे के सारे सूचनाएं वो शरीर के सब अंगों को भेजता है। जैसे अब देखो न चाहते भी ना मानो कोई मच्छर बैठ गया काटा कुछ आपको चुभा तो सोचने और उसका टाइम नहीं होता खुद ही रिएक्शन होता है और खुद ही वहां पर हाथ पहुंच जाता है। कोई चीज चुभी कहीं कोई भी हुआ सेंसेशन तो ये मन एक प्रोग्रामर है और इस प्रोग्रामर को क्या होना चाहिए ह्यूमन माइंड इज लाइक ए पैराशूट। मन जो है एक पैराशूट की तरह है और बस ये काम तभी करता है जब वो एकदम खुला होता है और ओपन। हाँ आ जाओ तो माइंड खुले का क्या भाव है इसमें कैसे काम करेगा मन हा? जब हम मन को संकुचित कर लेते हैं ना मेरा धर्म ये है मेरा ये गांव है ये है मैं तो व्यक्ति संकुचित हो जाता है और जब मन खुला रहता है पूरा का पूरा कि नहीं वसुधैव कुटुंबकम भावना भाई जिस जो धर्म के हैं वो तो है ही है जो गांव है शहर है जो हमारा संबंध है वो तो है लेकिन मन के अंदर इस संकुचित विचारधारा को न रहने दिया जाए तो वो जब संकुचित विचारधारा नहीं रहती है तो क्या होता है मन खुला रहता है और पैराशूट जैसे है ना जब खुल जाता है तो सेफ लैंडिंग हो जाती है। पैराशूट अगर खुले ही ना तो व्यक्ति गिर जाएगा और मृत्यु हो जाएगी। तो इसे किस तरीके से आप देखो एक शेरों की कहानी दो बच्चे थे शेर के एक मनुष्य ने पाले ले आया और बस 1969 की ये कहानी है वो बता रहे हैं और शेरों के साथ वो रहे शेर के बच्चों के साथ प्रेम से आप देख रहे हैं और ये उनका नाम वगैरह लिखा हुआ है क्रिश्चियन नाम था शेर के साथ बहुत खेले कूदे शेर के बच्चों को उन्होंने सिखाया आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये और ये व्यक्ति हैं जिनके साथ शेर रहा कितने प्यार से ये दोनों भाई वो शेर के साथ प्रेम से रह रहे हैं। और फिर इन्होंने क्या करा जो वहां का गवर्नमेंट थी उसने कहा नहीं शहर के अंदर तो शेर को नहीं रख सकते हैं आप इनको जंगल में छोड़ के आओ तो वो जंगल में छोड़ के आ गए और काफी एक साल बाद उनको हुआ कि जाके मिले वो गए बहुत कोशिश करी जंगल में इधर उधर जाके देखने की फिर एक जगह वो शेर मिले। बस वो डर रहे थे कि भाई जंगल में अब शेर रह रहा है पता नहीं लेकिन वो शेर आके इतने प्यार से मिला वो साथ साथ देख रहे हैं ये मतलब रियल स्टोरी है और बस कितने प्यार से मिल रहे हैं वो और केवल इतना ही नहीं शेर ने वहां पर अपना जो संसार रचाया हुआ था जंगल के अंदर वो फिर वहां पर उनको मिलाने के लिए लाया। अभी आप देखेंगे पहले इनके साथ इतने प्रेम से कुछ सालों के बाद जब ये गए तो इस तरीके से ये मिल रहे हैं हाँ। और फिर शेर को छोड़ दिया शेर जाके अपने परिवार को लेकर के आया और बस वो सोच रहे थे चलो शेर को तो हमने बचपन से पाला है उसका परिवार कैसा होगा वो तो भी जंगली हिंसक प्राणी है लेकिन नहीं शेर का वो देख करके उसका परिवार के भी जो और दूसरे सदस्य थे वो आए, तो ये प्रेम की शक्ति है। हमारे भारतीय संस्कृति में तो प्रेम की शक्ति के बारे में बहुत बताया गया है, लेकिन ये मतलब उसके अंदर तो ये मतलब जिसके लिए ना, तो आप समझो जब मनुष्य पशु पक्षी इन जीव जंतुओं के साथ इतना प्रेम करके उनको बदल सकता है, उनकी हिंसक प्रवृत्ति को बदल सकता है। भगवान अभी आया है और हम सबको जीवन किस प्रकार से बदल रहा है वह तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय खुद ही उसका स्वरूप है। और ये तब होगा जब हम यहाँ पर जब आए हैं अपने माइंड को पैराशूट की तरह खुला रखेंगे। जब माइंड हमारा ये पैराशूट की तरह बिल्कुल खुला रहेगा ना, तो क्या होगा, यहाँ की जो भी बातें आप सुन रहे हैं सीख रहे हैं, आज तो पहला दूसरा ही दिन है, तीसरे चौथे दिन तक वो आपके दिमाग में पूरी की पूरी उतर जाएंगे। तो अपने माइंड को हमेशा खुला रखिए, और जब खुला रहेगा तो वो बिल्कुल पैराशूट की तरह वो वर्क करेगा। यस, ठीक है। फिर हमारा एटीट्यूड, ये सब निर्भर करता है हमारे दृष्टिकोण के ऊपर। जीवन जीने की कला, अभी तक कितनी कलाएं सीखी जीवन जीने की, पहली एक थी जीवन के दो मुख्य पहलू, लुक इंटरनली फॉरवर्ड एक्सटर्नली, यानी कि एक आंतरिक पक्ष एक बाह्य पक्ष मोटे रूप से। फिर जीवन मेज के समान है तो चार उसके पक्ष और सुने आपने, फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल, वो देखे। और फिर जीवन का ये मेंटल पक्ष को किस प्रकार से ओपन रखने की जरूरत है वो देखा। फिर साथ में देख रहे हैं हमारा एटीट्यूड, हमारी विचारधारा, जीवन जीने के लिए एक पॉजिटिव विचारधारा की बहुत ही आवश्यकता है। एक है नेगेटिव एटीट्यूड, मानो मैं आपके घर आया, गर्मी का दिन है, प्यास लग रही है, मैंने पानी मांगा, आपने पानी दिया, वो आधा गिलास भरा हुआ है योसी। अब मैं दो रीति से सोच सकता हूं, अरे हाफ एम्प्टी, मैं जीवन का खाली हिस्सा देखूंगा तो दुख होगा, अरे इन्होंने इतना ही पानी दिया, इससे मेरी प्यास कैसे बुझेगी। अब वो है आधा ही भरा हुआ, लेकिन साथ ही साथ अगर मैं जीवन का दूसरा पक्ष भरा हुआ पक्ष देखूंगा, अरे ये पानी दिया, चलो इससे मैं अपनी प्यास बुझाता हूं। तो बात वही है, लेकिन हम जीवन का ना कई बार खाली पक्ष देखते हैं अक्सर करके, भाई मेरे पास तो स्कूटर ही है, पड़ोसी के पास तो कार आ गई, मेरा तो ये फ्लैट है दो बेडरूम का, उसका तो चार बेडरूम का बंगला बन गया, मेरे पास तो ये नहीं है, उसके पास ये है। तो ये जो होता है, हम जीवन का खाली पक्ष देखते हैं ना, इससे जीवन में हमेशा दुख होता है जब हम दूसरों से तुलना करता है। तो इसीलिए जीवन के प्रति हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखे कि जीवन का भरा हुआ पक्ष देखें हम, मेरे पास क्या है, भगवान ने क्या क्या दिया है, उसको देख करके अगर हम खुश और आनंद में होते रहेंगे, ये जीवन जीने की एक बहुत अच्छी कला है। बचपन में हमारी दादी ने एक कहानी सुनाई थी, आप सब लोगों ने भी शायद सुनी होगी, वो थी एक परिवार की कहानी कि भाई एक कपल थे पति पत्नी, वो बेचारे दोनों अंधे थे, अंधे थे, गरीब भी थे, और अंधे और गरीब होने के साथ साथ उनके कोई बच्चा भी नहीं था, तो दुखी रहा करते थे। उन्होंने सुना था भगवान जब खुश हो जाते हैं तो सब देते हैं, उन्होंने भगवान की बहुत तपस्या की, भगवान ने दर्शन दिए, कहा एक वर मांग, एक वरदान मांग लो। अब वो सोचने लगे क्या वरदान मांगे, भाई अंधे हैं, अगर आंख मांग लेंगे तो गरीब के गरीब भी रह जाएंगे और बच्चा भी नहीं है, अगर वो पैसा मांग लेंगे तो पैसा तो आ जाएगा लेकिन आंख के अंधे रह जाएंगे। तो उन दोनों में पति पत्नी में आपस में विवाद होने लगा, उन्होंने कहा भगवान जी चलो आज नहीं, आप कल को फिर दर्शन देना, कल हम अपना जो वरदान है आपको बता देंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है, तो उन्होंने बहुत विचार करके अगले दिन जब दर्शन हुए तो कहा, भगवान आप हमें क्या करो, ऐसा वरदान मांगा आप, हे प्रभु आप मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं अपने पोते को सोने की चम्मच से दूध पिलाता हुआ अपने घर की सातवीं मंजिल पर देखूं। अपने पोते को, पोता तो तब होगा, पहले तो बेटा होगा, बेटा बड़ा होगा, उसकी शादी होगी, बच्चे होंगे, तो अपने यानी उम्र भी मांग ली सोने की चम्मच से, और सातवीं मंजिल तो भाई अब साधारण थोड़ी, अच्छी तरह पैसे वाला हो गया, सोने की चम्मच से दूध पिलाता देखूं, आंख भी मांग ली। तो ये है, अच्छी तरह कोई भी कर्म अगर कर लेते हैं हम, जीवन में सफलता चाहते हैं तो क्या करें, सोच विचार के। जीवन में कर्म जब होता है, जब हम एकदम बिना सोचे कोई रिएक्शन दे देते हैं तो बाद में हमें पछताना पड़ता है। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि जीवन में कभी पश्चाताप न करना पड़े तो अच्छी तरह सोच विचार के कर्म करेंगे तो जीवन में कभी पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। अभी देखो यही गिलास की बात है, एक प्रोफेसर साहब अपने लेक्चर्स दे रहे थे, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे, कह रहे थे कि भाई शराब पीने से बहुत नुकसान होता है शरीर को, तो बहुत सारा सब कुछ उन्होंने बताया, तो बता के उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिखाया सबको। क्या एक्सपेरिमेंट दिखाया, एक गिलास में उन्होंने दूध पानी लिया, साधारण कांच का गिलास था, और दूसरे गिलास में शराब लिया, दोनों कांच के गिलास थे। तो पहले गिलास में जिसमें पानी लिया उन्होंने, उसमें दिखाया स्टूडेंट को, एक छोटा सा कीड़ा पकड़ा और पानी में डाल दिया, वो पानी में जाके तैरने लगा, तैरता रहा, कुछ नहीं हुआ, थोड़ी देर में प्रोफेसर साहब ने उसे निकाल करके टेबल पर रखा, वो टेबल पर चलता रहा, बहुत हेल एंड हेल्दी था, तंदुरुस्त था। फिर प्रोफेसर साहब ने दूसरा गिलास लिया जिसमें शराब थी, और उसमें उस कीड़े को डाल दिया, कीड़ा अंदर गया, तो देखा थोड़ा झूमने लगा, तो क्यों झूमने पर क्यों खुश हो गए सब, क्योंकि शराब थी, एक दो बूंद कीड़े के पेट में भी चली गई होगी, बड़े बड़े पेड़ के झूम जाते हैं पी के, तो ये तो बेचारा छोटा कीड़ा था, झूमने लगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो कीड़ा एकदम शांत हो गया, मर गया, एकदम शांत हो गया। प्रोफेसर साहब ने काफी हिलाया उसे, कोई लाइफ नहीं थी, मर गया, और मरा ही नहीं, उसके शरीर के जैसे टुकड़े से होने लगे, और वो कलर भी शराब का चेंज होने लगा, घुलने लगा उसका शरीर शराब के अंदर। तो ये एक्सपेरिमेंट दिखा के प्रोफेसर साहब ने पूछा कि भाई इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो स्टूडेंट सब सोचने लगे, और एक स्टूडेंट ने हाथ खड़ा किया, तो हाँ हाँ क्या स्टूडेंट, क्या शिक्षा मिलती है, कि सर इससे बड़ा क्लियर है शिक्षा मिलती है कि यदि हम शराब पियेंगे, कंज्यूम करेंगे, हमारे पेट के सब कीड़े वीड़े मर जाएंगे और हम हेल्दी रहेंगे। तो ये हमारे एटीट्यूड, सोचने के ढर्रे पर निर्भर करता है हम क्या सोचते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कहावत है ना, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमारे पास रिटर्न होके आएगा, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अगर हम किसी के प्रति ना कुछ पॉजिटिव सोचेंगे, उस व्यक्ति की विचारधारा भी परिवर्तन होके वो भी पॉजिटिव हो जाएगी, और निगेटिव सोचेंगे, होता क्या है कि किसी ने हमारे साथ कभी भी कुछ ऐसी बात हो गई है, खराब बात की है, तो जैसे ही वो व्यक्ति सामने आता है हमारे मन में वही पुरानी बात आने लगती है, इसने मेरे साथ ये किया ये अब मैं भी इसे देख लूंगा या बदला लेने की भावना कही। तो एटीट्यूड हमारा जीवन के प्रति, दृष्टिकोण हमारा सदा पॉजिटिव रहे, एक ये देखना है। वास्तव में निगेटिव क्यों होता है, हम वो खाली देखते हैं। वास्तव में क्या ये गिलास खाली है, आधा नहीं? हम सोचते हमारे पास ये चीज नहीं है, लेकिन वास्तव में उसका लेने की हमारे अंदर जो इच्छा है ना, वो इच्छा उस चीज को कभी ना कभी हमारे सम्मुख अवश्य प्रस्तुत करेगी। जैसे ये गिलास आधा खाली आधा भरा कहते हैं, लेकिन वो खाली नहीं है, उसमें भी हवा भरी हुई है, हवा है वो। ऐसे ही जीवन में भी ना, हम कभी भी तुलना करते हैं, मेरे पास ये नहीं है, ये होना चाहिए, वास्तव में है बात नहीं। इसे इस रीति से देखना चाहिए, अगर मैं जितना पॉजिटिव रहूंगा और जो चीज होती है वैसा ही आकर्षण, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बहुत बहुत पॉजिटिव नियम है दुनिया का, बहुत पक्का नियम है, तो हम जैसा कल्पना करेंगे धीरे 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 जितना हमारा संकल्प शक्तिशाली होगा उतना ही वो चीज जैसे कि हमारे पास आती जाएगी। कैसे हम अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए, कहना तो बड़ा आसान है पॉजिटिव हो जाओ, लेकिन पॉजिटिव होने के लिए तीन चीजों की खास आवश्यकता है। क्या है ये पढ़िए, हैं? हाँ, मन का काम है सोचना। तो मन जब सोचता है ना, बहुत सोचता है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, न चाहते भी मन के अंदर इतने हजार विचार आ जाते हैं, तो क्या होता है, कभी अभी आप यहां बैठे हो हैं? तो बड़ा अच्छा है, क्वालिटी ऑफ थॉट आपकी बड़ी अच्छी है, क्वांटिटी ऑफ थॉट बहुत लिमिटेड है, जैसा बताया गया है। साधारणतः 25-30 हजार विचार आते हैं, लेकिन अभी आपको सडनली मोबाइल में मैसेज आ जाए कि अरे भाई आपका फलाना संबंधी नियर एंड डियर, बहुत आपको प्यार है, उससे उसका एक्सीडेंट हो गया और वो बहुत सीरियस है। जैसे ये मैसेज आएगा आपके मन में बहुत विचार बढ़ने लगेंगे, अरे क्या हुआ, कैसे हुआ, अब पता नहीं उसका क्या है, कौन से अस्पताल में है, उसके तो बच्चे बड़े छोटे हैं, आदि आदि। तो जो 25-30 हजार विचार होने चाहिए, बढ़ते बढ़ते 40-50-60 हजार, बार बार इतने विचार आएंगे, मन के अंदर टेंशन होगा। तो क्वांटिटी ऑफ थॉट जो है ना, ये बहुत बढ़ने लगेगी। क्या इलाज है इसका? दूसरा है क्वालिटी ऑफ थॉट, विचारों की गुणवत्ता। तो जब क्वांटिटी ऑफ थॉट किसी चीज की बढ़ती है तो क्वालिटी कम हो जाती है, और क्वालिटी बढ़ती है तो क्वांटिटी कम हो जाती है। मानो दो परिवार हैं, दो परिवार में जो हेड है, जो भाई है कमाने वाला, दोनों को बराबर तनख्वाह मिलती है, मानो 20,000 मिलती है, दो परिवार है, लेकिन एक परिवार के अंदर एक बच्चा है, दूसरे परिवार के अंदर 5 बच्चे हैं, तो दोनों की आमदनी सेम है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कैसा, किसका ज्यादा अच्छा होगा, जिसके एक बच्चा है। तो क्वांटिटी भी यही होती है, जब हमारी क्वांटिटी ऑफ थॉट कम होगी तो क्वालिटी ऑफ थॉट बहुत हाई होगी, और जिसके अंदर क्वांटिटी ऑफ थॉट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा विचार आते हैं, उसकी क्वालिटी ऑफ थॉट कमजोर होती जाएगी। तो इसीलिए अपने जीवन में ये विचार करना चाहिए कि मेरे क्वांटिटी विचारों के जो संख्या है वो कम हो। कैसे होगी? यहां पर अभी मैं बैठा था इधर, तो उषा बहन ने जब परमात्मा का लेक्चर दिया और उसके बाद लाल बत्ती जलाई और थोड़ा कमेंट्री दी, भाई मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, बस धीरे धीरे वो विचार दे रही थी, आप लोग भी उसी विचार में को सुन रहे थे। तो जब विचारों की संख्या कम होती है तो विचारों की क्वालिटी बढ़ जाती है, या दूसरे रूप में अगर हम विचारों की संख्या कम करना चाहते हैं तो क्वालिटी को बढ़ा दें। और वो क्वालिटी जैसे अभी योग से देखा आपने, ऐसे बड़ी। तो इसीलिए क्वालिटी ऑफ थॉट के लिए बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि योग हम थोड़ा सीखेंगे तो योग से विचार की क्वालिटी बढ़ेगी। और साथ साथ तीसरी चीज एक और है, डायरेक्शन ऑफ थॉट्स, विचारों की दिशा। बस जब बहुत सारे विचार होते हैं, बचपन में वो कहानी सुनी होगी ना, एक पिता के अपना कुछ चार पुत्र थे, उसने छोटे डंडियों का लकड़ियों का गट्ठर बांधा और बच्चों को कहा इसे तोड़ो, कोई नहीं तोड़ सका। और जब गट्ठर खोल दिया, एक एक अलग हो गई, तो सबने तोड़ दिया। इसीलिए जब ये इकट्ठे होते हैं, एक जगह होते हैं, वो है शक्ति, और जब अलग अलग हो जाते हैं तो कमजोर हो जाते हैं। इसीलिए कई बार हमारे बहुत विचार चलते हैं, अभी यहां बैठे हैं, अभी अभी शरीर से यहां है, मन से अपना अमृतसर पहुंच गए, मन से अपना बंबई पहुंच गए, जहां से भी आए हैं, जो काम पड़े हैं, मन से एंटरटेनमेंट के लिए यहीं पहुंच गए कहीं। तो अलग अलग जब विचार हो जाते हैं बहुत, तो वो कमजोर हो जाते हैं, और जब विचार एक जगह कर देते हैं, बड़ा शक्तिशाली हो जाते हैं। बचपन में आपने वो एक एक्सपेरिमेंट किया होगा शायद, वो एक लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, सूरज के सामने रखते हैं तो किरणें जो हैं एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, और नीचे कागज वगैरह है वो जला देती है। करा है ना सबने ऐसा, वो बड़ा सहज है, वही सूरज है, वही सब कुछ। नॉर्मल केस में सूरज के सामने कागज रखो नहीं जलेगा, लेकिन वो लेंस रखेंगे, सूरज की किरणें एक जगह कन्वर्ज हो गई, कितनी। ऐसे ही डायरेक्शन ऑफ थॉट, अगर हम विचारों को एक तरफ केंद्रीकरण करने की कला सीख जाए तो क्या होगा, उन विचारों में इतनी शक्ति आ जाएगी कि जीवन में कभी भी उनके द्वारा हम कुछ भी सीख सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। तो इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, राजयोग, ये जीवन में ये दिखाता है किस प्रकार से हम उस कला को सीखें। तो इसीलिए आप देखो कैसे अब इसको सीखेंगे, इसको देखेंगे आप, क्योंकि मन के अंदर जो विचार आते हैं ना, कहाँ कैसे हम उन विचारों को प्रदर्शित करते हैं, मन में कोई विचार आया तो क्या करते हैं, मुंह से बोलते हैं, तब वो विचार दूसरों के सम्मुख रखे जाते हैं। मछली होती है, मछली कांटे में कब फंसती है, कभी फिशिंग करी है, हो सकता है किसी ने करी हो, जाके कांटे में मछली का भोजन कुछ लगा दिया और बस मछली आती है, देखती है, मुंह खोली और कांटे में फंस जाती है। तो इसीलिए ये कहा गया है कि मुंह जब हम खोलते हैं ना बोलने के लिए, मुंह तो खोला जाएगा, तो उससे कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। साइलेंस इज गोल्डन, स्पीच इज सिल्वर कहा जाता है। तो साइलेंस इज गोल्डन एंड स्पीच इज सिल्वर, ये भाई कहानी मिलती है कि भगवान भी ना जब मनुष्य की सृष्टि की रचना कर रहा था, सब पशु पक्षी जीव जंतु सब बनाए, फिर अंत में उसने मनुष्य को बनाया। तो भगवान की तो इच्छा थी कि मनुष्य सबका लीडर है, बड़े प्रेम से रहे, और इसके लिए उसने क्या किया, सब मनुष्य को अच्छी तरह सारे रूपरेखा दी और मुंह बनाया ना मुंह के अंदर, कि ये प्रेम से रहेगा तो झगड़े की बात नहीं करेगा। तो जीभ जो बनाई ना, बड़ी फ्लेक्सिबल बनाई। इसीलिए किसी ने कहा है, कुदरत को नहीं थी मंजूर सख्ती इंसान में, भगवान को नहीं थी मंजूर सख्ती इंसान में, इसलिए खुदा ने नहीं बनाई हड्डी जवान में। भगवान ने जवान में हड्डी नहीं बनाई, कितनी फ्लेक्सिबल है जवान। लेकिन मनुष्य तो बड़ा क्रिएटिव है, मनुष्य ने कहा भगवान चलो तुम मत बनाओ हड्डी, मैं बिना उसके ही काम निकाल लूंगा। तो कितने कटु वचन बोल देता है, और इतने कटु वचन बोल देता है कि बहुतों को दुख हो जाता है जीवन में, अशांति हो जाती है, और जब इतने दुख अशांति लोग बोल के कारण, इवन कुछ लोग मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। कितना झगड़ा, आज दुनिया में अधिकतर झगड़ा हमारे यहाँ से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के भाई बहन, अभी रक्षाबंधन भी आ रहा है ना, तो सब आत्माओं को राखी बांधते हैं व्यक्तियों को, और इसमें कई बार जेल में भी जाते हैं, बेचारे कैदी हैं, उनको भी थोड़ा बहनों का प्यार मिल जाए, राखी और स्वीट्स आदि जाते हैं वहां, क्योंकि ऐसे हैव नॉट्स जो होते हैं, तो वहां जाके कई बार ये पता चलता है कैदी बहुत अच्छे परिवार का है, सब कुछ है, बस किसी वक्त जोश में क्रोध में आकर के, ये मुंह का ठीक प्रयोग नहीं करा, क्रोध में आकर के किसी को मार दिया, आजीवन कैद हो गई, किसी को सजा हो जाती है। और इस कारण से ये मुंह जो है ये इस रीति से है, जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी कला है। कौन सी कला? आप किसी के साथ बहस हो रही है, बातचीत हो रही है, बस उसकी, चलो हम हरेक चाहता है मैं ठीक हूं, मेरी बात मानी चाहे, दोनों में आप चुप हो जाओ उस वक्त, झुक जाओ। झुकना भी जीवन की एक बहुत बड़ी कला है। कई बार झुक कर हम दूसरे को सदा के लिए झुका सकते हैं, लेकिन मनुष्य क्रोध में आवेश में होता है, वो दूसरे की बात मानने को तैयार ही नहीं होता। इसलिए कहा है किसी ने ना, दूसरे के खुद झुक जाना ये जीवन की कला है। झुकता वही है, देखो शरीर है ना, सुना होगा बहुत पुराना है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दा होता है ना, हाँ, अकड़ जाता है, आत्मा चली जाती है, स्टिफ हो जाती है। अगर हम भी अपने विचारों में स्टिफ है, नहीं मैं जो कह रहा हूं सही है, तुम जो कह रहे हो गलत है, बस ये होता है, इससे जीवन झगड़ा और ये असुरक्षा की भावना और ज्यादा होती चली जाती है। तो जीवन में झुकना भी आना चाहिए, कहां पर? और वो हमारे बोल से प्रदर्शित होता है। देखो बोल भी ना ऐसा है, हा? कहते हैं ये कमान से निकला हुआ तीर और हाँ जवान से निकले हुए बोल कभी वापस नहीं आते। भाई जवान ये मुंह की तुलना कमान से क्यों की गई है? देखो गौर से देखना, कमान होती है ना ये ऐसा, और नीचे वो धागा होता है, कमान जैसा है ना ये मुंह, और शब्द अंदर से निकला तीर, और बस इसीलिए जब क्रोध में कभी कोई बात करता है आवेश से तो क्या होता है, साधारण बात होगी, तेज तेज उसका वॉल्यूम इतना तेज हो जाता है, और बहुत तेज तेज मनुष्य बोलता है क्रोध में जब होता है। क्यों बोलता है तेज? हम तेज जीवन में कब बोलते हैं? भाई यहां से वही जो उसके हॉल के बाहर कोई खड़ा है उसे बुलाना है तो जरा तेज आवाज से बोलेंगे कि भाई उसको आवाज सुनाई दे और वो आ जाए। लेकिन ये तो भाई बगल में ही है, बिल्कुल बिल्कुल बगल में है, लड़ रहे हैं, तेज आवाज से बोलते हैं। क्यों? वो दिल से दूर हो जाते हैं, दिल से बहुत दूर है, इसलिए ऑटोमेटिकली बहुत तेज आवाज। आप देखो जहां पर बिल्कुल प्रेम से बात करेंगे थोड़ा धीरे बोलेंगे, फुसफुसा के भी बोलेंगे, बस हम दो ही सुन सके, जहां पर प्रेम का वातावरण होता है। क्यों? दिल से वो नजदीक है। आवश्यकता इस बात की है जीवन में मधुर मीठा बोलने की। बहुत हमारे बोल के गए हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो ये केवल सुनने और कहने की बात नहीं है, जीवन के अंदर ना ये जितना आता जाता है मनुष्य खुद शीतल होता जाता है। आप देखो कोई आप सहज है? छोटा सा भी काम आप कर दोगे, अंधे को रोड क्रॉस करा दी, बड़ी शांति का अनुभव होगा, खुद ही खुशी का अंदर ही अंदर। कुछ लिया दिया आपने कुछ भी नहीं, लेकिन बस जरा सा सहयोग दिया। तो आवश्यकता इसी बात की है कि हम अपने ऊपर कितना सेल्फ नियंत्रण करते हैं। अभी आप देखो ये बचपन में सबने कहानी पढ़ी होगी शेर चूहे की। हा? शेर जंगल में सो रहा था, चूहा आया, उछल कूद उसके शरीर पर मचाने लगा, तो चूहे शेर ने पकड़ लिया। चूहे ने कहा महाराज आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए, कभी आपके काम आऊंगा। उसने छोड़ दिया, फिर सबने ये कहानी सुनी है, शेर एक बार फंस गया शिकारी के जाल में, चूहों ने उसे बचाया, ये कहानी तो सुनी है। लेकिन इसका सार क्या है? इसका सार यही है कि कभी भी किसी को छोटा नहीं समझो, और जो कमजोर है कोई भी कभी किसी के काम में आ सकता है। यानी कोई गरीब है, असहाय है, छोटा है, प्रेम से सबको चलाते चलो। परिवार के अंदर हो, समाज के अंदर हो, और जितनी ये भावना हमारी रहती है उतना जीवन के अंदर हम आगे बढ़ते रहते हैं। और साथ में क्या है कि जीवन में ना कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं से हम डरे नहीं। पतंग होती है, जीवन रूपी पतंग, हाँ पतंग तो उड़ाई होगी ना, पतंग कब ऊपर जाती है? हाँ आप लेके धागा खड़े हैं, पतंग भी है लेकिन ऊपर जा ही नहीं रही, क्यों? हवा नहीं जब होती, और जब तेज हवा होती है पतंग भी और खूब ऊंचे जाती है, उसे उड़ाने में भी मजा आता है। ऐसे ही हाँ जीवन रूपी पतंग जो है, अगर बहुत हवा के थपेड़े आ रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं, प्रॉब्लम आ रही हैं, और परीक्षाएं जीवन के अंदर आ रही हैं, उनसे घबराए नहीं, वो जीवन रूपी पतंग हमारी और ऊपर 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 जा रही है। क्यों? क्योंकि क्या समझे हम? तूफान को तोहफा समझो। जीवन में प्रॉब्लम आती हैं, तूफान आते हैं, उनको तोहफा समझ, तोहफा देते हैं, खुशी होती है ना, भगवान ऊपर से तूफान प्रॉब्लम को दे रहा है। क्यों? हमें परिपक्व बनाने के लिए, जिससे इससे आगे अगर कोई और बड़ी समस्या आए इसमें हम और मैच्योर होके उसको अच्छी तरह और हैंडल कर सके। इसीलिए तूफान को तोहफा समझ करके सदा और आगे बढ़ते रहे। और साथ में क्या होना चाहिए? हाँ जीवन में देखो पांचों उंगलियां तो हाथ में भी बराबर नहीं बने ही हैं, इसीलिए क्या वो समझो ये व्यक्ति है अब जा रहा है साइकिल पर और इमेजिन कर रहा है कार का कि मेरे पास कभी ऐसी कार होगी और एंजॉय। तो हम चाहे जिस स्टेटस के हों लेकिन विचार हमारी थिंकिंग जो है वो हाई रखे। आप यहां पर आए हैं, हाँ क्यों आए हैं? इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का क्या लक्ष्य है? कल भी आपको जो गिफ्ट दी ना उसमें लक्ष्य दिया हुआ है। क्या लक्ष्य है आपका? हाँ किसी ने ठीक बोला, हाँ भाई बनेंगे तो एक ही ना, हाँ तो इसीलिए और उसको क्या मॉडिफाई करो, किससे लक्ष्मी, किससे नारायण, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मीपत। बड़ी थिंकिंग हाई। आप किसी को जाके बताएंगे हम ऐसे विद्यालय में होके आए हैं जहां ये डिग्री मिलती है नर से नारायण नारी, हंसी उड़ाएगा, समझेगा नहीं। अरे लक्ष्मी नारायण ये तो कितने ऊंचे भगवान हैं, देवता हैं, माथा टिकाओ। लेकिन यहां आके ये बताया जाता है कि आप हाँ थिंकिंग अपनी हाई रखेंगे आप वैसे बन जाएंगे। इसीलिए अपनी थिंकिंग को हमेशा हाई रखो, ऊंचा रखो कि नहीं मुझे ऐसा बनना है। और इसके लिए जब जाएंगे आप इंस्टीट्यूशन से रेगुलर कॉन्टेक्ट रहेगा वैसे आप बनते जाएंगे इसके अंदर। तो हमारी भारतीय संस्कृति ने भी ना दो सिद्धांत बहुत अच्छे दिए। हाँ क्या है? एक तो है जियो और जीने दो। बस जीवन के अंदर समस्याएं तभी आती हैं जब हम दूसरों को अपनी इच्छा से चलाना चाहते हैं। सास बहू है, बाप बेटा है, या भाई भाई है, या बिजनेस पार्टनर है, दूसरे को जब हम बिल्कुल अपनी इच्छा से, हर एक मनुष्य स्वतंत्र है, हाँ बताना हमारा कर्तव्य है गाइड करना, लेकिन अगर हमारी इच्छा से नहीं चलते हैं दूसरा तो उसके लिए फिर टेंशन तो हमें होता है, प्रॉब्लम हमें होती है, समस्या। इस कारण से जियो और जीने दो ये सिद्धांत, पहले हम अपने को देखें। कहते तो हैं कि भाई जब हम दूसरे की तरफ इशारा करते हैं तो क्या होता है? तीन उंगली अपनी तरफ, एक उधर और एक अंगूठा, यानी ईश्वर को साक्षी रख के ऐसा करते। तो अपने को देखो, अपने को देखने का भाव क्या है? क्या होता है? कि बचपन से ही ना हम बच्चे होते हैं उनमें भी ऐसा संस्कार डाल देते हैं कि वो बड़े होते होते भी जब तक वो दूसरों को ब्लेम हम वो करना सीख जाता है। माताएं बैठी हैं यहां, आपको वो होगा अनुभव खास करके है, छोटा बच्चा होता है बस सबको प्यारा होता है, थोड़ा बड़ा होता है चलना सीखता है, खड़ा होना सब माँ बाप और सब संबंधी खुश होते हैं, थोड़ा और चलता है एक दो कदम और खुश होते हैं, बस कभी बहुत तेजी से चलता है गिर जाता है रोने लगता है तो माता क्या करेगी, क्या करती है माता जी, भाई वो गिरा रोने लगा तो जमीन को मारेंगे ऐसे उसको, ये कि भाई ये जमीन का दोष है तुझे लग गई चोट और तेरा दोष नहीं है, जमीनकार ऐसे करेंगे, बच्चा भी देखता है और वो बोलेंगे भी ऐसे तो बस बच्चा एकदम चुप हो जाता है, फिर खड़ा होके फिर चलने लगता है। लेकिन उसको लाइफ लॉन्ग हमने ये सिग्नल दे दिया कि यू आर नेवर रॉन्ग, तुम कभी गलत नहीं हो, हमेशा दूसरा ही गलत है, उसकी वजह से ही ये समस्या हुई। इसीलिए हम कहते हैं भाई उसने ऐसा कहा तो मुझे क्रोध आ गया, उसने ये किया तो मैंने ऐसा रिएक्ट किया। हाँ, जो ब्लेम गेम होता है जो हम सीख जाते हैं, तो जीवन की कला ये है कभी भी ब्लेम गेम के ऊपर हम ज्यादा न करें, वो बचपन से ही हम ऐसा ब्लेम गेम सीख जाते हैं। बड़ा अच्छा कहा है किसी ने, गौर से सुनना, कि जिंदगी भर गालिब एक ही भूल करते रहे, जिंदगी भर गालिब एक ही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करते रहे, है ना प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम हमारे साथ है लेकिन हम समझ रहे हैं आईने में धूल पड़ी है उसे साफ कर, हम दूसरे को तो करेक्ट करना चाहते हैं ये ऐसा ना करे, इसका व्यवहार सुधरे ये, लेकिन अपनी ओर हमारा ध्यान नहीं। बस इंस्टीट्यूशन की एक यही ब्यूटी है, इसका कंसंट्रेशन यही है, हम अपने को पहले सुधारें, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, ये हमारा वो है। तो इस कारण से ये अपने को सदैव देखते रहे, और इसमें यही बताया गया है जब आपकी थिंकिंग आई मुझे ऐसा बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तो बस थिंकिंग हाई होगी, ये छोटी छोटी बातें ना ये जीवन से निकलती ही जाएंगे। और क्या हमें देखना है, जब से हम पैदा होते हैं ना तब से हम सब के अंदर दो शक्तियां विशेष होती हैं। कौन सी दो शक्तियां, एक है याद रखने की शक्ति, एक है भूलने की शक्ति। हम सब के अंदर ये दो शक्तियां बचपन से हैं, लेकिन जीवन की विडंबना क्या है कि जो बात हम याद रखना चाहते हैं वो तो भूल जाते हैं, और जो बात भूल जानी चाहिए वो बरसों तक याद रहती है। मेरा आपसे मनमुटाव हुआ बड़ी थोड़ी देर की बात है, भूल जाना चाहिए लेकिन वो तो बरसों तक याद रहेगा कि इन्होंने ये करा, अच्छा मुझे भी जब मौका मिलेगा मैं भी इन्हें दिखा दूंगा। भूल जानी चाहिए, और जो बात भूलनी चाहिए वो बरसों तक याद रहती है। इस कारण से इन दोनों शक्तियों को हम यथार्थ रीति से यूज करें, जैसा राइट थिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब, वो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, राइट टूल फॉर द राइट जॉब। तो इसीलिए कहीं पर कपड़ा सिलना है, काम सुई धागा ही आएगा, उसमें हथौड़ी और छेनी वो काम नहीं आएगी। तो इसीलिए इन दो शक्तियों को हम ये यथार्थ रीति से, और ये कला योग के द्वारा सीखते हैं। आप मेडिटेशन सीखेंगे ना, ये शक्ति अपने आप बढ़ती जाएगी, याद शक्ति, फिल्टरिंग पावर, कहां फिल्टर करना है। आज भी परमात्मा का था कि बस किसी की सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास मत करो, उनसे कई बार माथा खराब हो जाता है, किसी ने आके कुछ कहा अरे तुम्हें ये बोल रहे थे, बस एकदम मनुष्य तुरंत उसका माइंड आउट हो जाता, अच्छा वो ऐसा कह रहा था, कान से सुना जैसे मुंह को देखा ये कमान की तरह है, इसीलिए तीर जैसा निकलता है। ऐसे कान में क्या ब्यूटी है, हाँ कान को देखो, ये कान ये क्या चीज है, क्या आकार है, क्वेश्चन का प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है ना, ये कान का आकार ही ऐसा बेचारा, कान में जो बात जाएगी प्रश्न उठेगा, क्यों क्या कैसे किस लिए, बस इसीलिए जो सुनना है ना वो कोई भी बात होती है, इसने कहते हैं एक्ट बट डोंट रिएक्ट, ऐसा इसके अंदर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, जब ऐसी परिस्थिति आए तो क्या, जब मौका सबके सामने आता है, आप भी यहां पर आए हो, आपके सामने एक गोल्डन चांस मिला है भगवान ने जीवन को एक बहुत खुशनुमा जीवन बनाने के लिए, तो अपॉर्चुनिटी सबके सामने आती है, लेकिन कई ये सोचेंगे चलो आबू है घूम के आते हैं सो, तो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई। लेकिन ये समझो कि यहां पर आप आए हो, ये जिंदगी में एक दो बार ही ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, यहां आके जो एक एक लेक्चर आप सीख रहे हो, जो योग सीख रहे हो, जो इतना परिवार के अंदर वातावरण आपको शुद्ध मिल रहा है, जो पवित्र अन्न मन के अंदर जा रहा है, ये सब साधारण बात नहीं है। जो बहुत बहुत भाग्यशाली होते हैं उनको ही ऐसा नसीब होता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये मौका है। ये देखिए कुत्ता है, आराम से सो रहा है खुर्राटे भर के, उसके पास उसका खाना रखा है। अब एक बिल्ली ने मौका देखा, नॉर्मल केस में बिल्ली डरती है, लेकिन बिल्ली ने मौका देखा ये कुत्ता तो सो रहा है, तो आई चुपके से धीरे से उसका खाना खा के चली गई। तो मौका पकड़ लेना चाहिए, ये मौका आपके सामने जो आया है ये बार बार जीवन में ऐसा नहीं आएगा कि ऐसा शुद्ध पवित्र वातावरण मिले और इस प्रकार के लेक्चर मिले। और क्या, आजकल हरेक कोई व्यक्ति ना हेल्थ कॉन्शियस होता है, बाबा रामदेव के भी कई लेक्चर आते हैं, उसमें प्राणायाम आसन और हेल्थ होना भी चाहिए, तन पहला सुख वो निरोगी काया कहा जाता है ना, तो सब सिखाते हैं भाई अलग अलग प्रकार के आसन, लेकिन कहते हैं नकल के लिए भी क्या चाहिए, अकल चाहिए। तो अभी देखो ये टीवी में ना दिख रहा है ये शीर्षासन करना जैसे सिखाया जा रहा है, अब देखने वाला अगर वहां कुर्सी पर बैठा देख रहा है, रिवॉल्विंग चेयर है बैठा देख रहा है, और वहीं पर ही अगर शीर्षासन करने लगेगा तो क्या होगा, गिर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, चोट लग जाएगी। तो नकल भी करो अकल के साथ। आप यहां से जाएंगे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो लोकल ब्रांच में भी कॉन्टेक्ट करना, और वहां से आपको गाइडेंस मिलती रहेगी, और इस प्रकार जीवन में आप आगे और बढ़ते रहेंगे। तो इसीलिए जीवन के अंदर सदा, क्योंकि जब आप जाएंगे तो कई बार टेंस एटमॉस्फेयर भी जीवन के अंदर आता है, तो टेंशन की बातें आती हैं। नॉर्मल केस में हर आदमी बीच बीच में एंटरटेनमेंट चाहता है भाई, कुछ मनोरंजन की बातें भी हो, दिल खुश रहे। ऐसे ही भाई लोगों को खास होता है भाई क्रिकेट मैच, जब कभी मानो इंडिया पाकिस्तान का हुआ मैच और 20-20 या 50 ओवर का हो रहा है, बस ऑफिस से छुट्टी ली भाई आज मैच देखना है, फाइनल मैच है, और ऐसी सिचुएशन आके अपना बस पैर फैला के बैठ गए, सिगरेट पी रहे हैं, टीवी सामने खुला है, टीवी में मैच देखना शुरू किया। इतनी देर में उस भाई के मिसेज आई, हाथ में छोटा बच्चा है कि लो ये बच्चा के मुंह में बॉटल है, भाई मैच भी देखते रहो, ये बच्चा बॉटल से दूध भी पीता रहेगा, मैं घर का काम कर लेती हूँ। वो घर के काम में बिजी हो गई, ये भाई मैच भी देख रहा है, बॉटल से बच्चे को दूध भी पिला रहा है। थोड़ी देर में बच्चा सो गया, तो बच्चे को उठा के उसने बेड पर सुला दिया और बॉटल मुंह से निकाल के एक तरफ रख दी, और मैच देख रहा है। बड़ी एक्साइटिंग स्टेज में मैच आ गया, 20 ओवर का मैच है, 17-18 ओवर हो गए, कुछ थोड़े से ही रन बनाने हैं, 5-6-7 विकेट गिर गए हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेज में मैच पहुंच गया है इतनी देर में, और देख भी रहा है, सिगरेट भी मुंह से निकाल के उसने रख दी और मैच देख रहा है। थोड़ी देर में बच्चा रोने लगा। अब उसका ध्यान तो सारा मैच की तरफ है, बच्चे को थोड़ा सुलाने की कोशिश करी कि बच्चा सो जाए, बच्चा नहीं सोया। जल्दी जल्दी में भाई अब वो रोए ना, मैच की तरफ ध्यान है, उठाया और उठा के क्या करा उसने, अब देखो कि जल्दी जल्दी में सिगरेट तो बच्चे के मुंह में लगा दी, बोतल अपने मुंह में लगा दी, दोनों रखी हुई थी ना। तो जैसे अभी आप हंस रहे हो ना, ऐसे जब अपने को टेंशन आता है तो दुनिया वाले भी दूसरे देख के हंसते हैं, भले कई बार आके सामने सहानुभूति प्रकट कर दें, लेकिन दूर से हंसते अच्छा है, मजा है, इसको ये ऐसा हुआ, तो दुनिया ही ऐसी है। तो इस कारण से स्ट्रेस में क्या करना चाहिए, कभी भी स्ट्रेस हो, कोई भी एक्शन जो है ना, उस वक्त मेजर एक्शन नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस में, टेंशन में हमेशा उसमें भूलें होती हैं अक्सर करके, तो जब तनाव हो उस सिचुएशन को चले जाने दो, ये भी एक जीवन जीने की कला है। तनाव चला जाएगा, जब नॉर्मल हो जाएंगे तब फिर आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और जीवन में बस आगे बढ़ते रहेंगे। ये निगोशिएशन है कि जीवन में ना क्या होता है कि जब बॉस, कई बार ऐसे प्रोफेशनल ऐसी सिचुएशन आती है, बस क्रोध के जो व्यक्ति को लक्ष्य होना चाहिए, कौन सा, मुझे विजयी बनना है, बस हर चीज में, चाहे प्रोफेशनल फ्रंट हो, चाहे डोमेस्टिक हो, चाहे कोई सोशल फ्रंट हो, मुझे जीवन में विजयी बनना है। कभी भी मनोविकारों से, काम क्रोध लोभ मोह, हारना नहीं है। तो इसलिए एक सिचुएशन है, देखो बॉस जो है गुस्सा हो रहा है, तो अगर गुस्सा होने वाला आदमी को देख करके दूसरे को भी गुस्सा आ गया और वो एकदम लो संभालो अपना, मैं तो जा रहा हूं, बस अगर वो जाता है, एक कहावत है पुरानी की, विनर्स नेवर क्विट, जो जीतने वाले होते हैं वो संसार का इनसे घबराते नहीं है, वो कभी छोड़ के भागते नहीं, एंड क्विटर्स नेवर विन, जो छोड़ जाते हैं वो कभी जीवन में जीत नहीं सकते। तो आप जीतना चाहते हैं या हारना चाहते हैं, सब जीवन में जीतना चाहते हैं, इसीलिए विनर्स नेवर क्विट, कोई परिस्थिति आए कभी भी छोड़ने का संकल्प, अरे ये है घर बार ऐसा है, कोई सन्यासी बन जाए, कोई आत्महत्या कर लेते हैं, कभी कोई परिस्थितियां से हार मान लेते हैं, नहीं, कभी भी ऐसा नहीं। यहां पर हम आए हैं, आज वो परिस्थिति है, कल बदल जाएगी, तो इसीलिए कभी भी सारी परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती। और ये जमाना ही है निगोशिएशन का, दी और ली, बस देना है जीवन में कुछ लेना, यहां पर आप आए हैं, यहां पर इतना सब आपको मिल रहा है, बस अच्छे ज्ञान की बातें, योग की बातें, ध्यान की बातें ये मिल रही हैं, तो इसमें आप क्या करिए, यहां पर कुछ छोड़ करके जाइएगा। क्या छोड़ के जाइएगा, जो अपने अंदर कोई कमी कमजोरी है, देखो यहां बॉक्स भी रखा है ना, उसके अंदर हे प्रभु, बाबा का भी कमरा है, वहां आप जाते होंगे कभी, हे प्रभु मेरे अंदर ये कमजोरी है, जो कमजोरी हो लिख करके, स्मोकिंग का है मानो, हमारे पास ऐसे उदाहरण है, 20-20 पैकेट सिगरेट का एक दिन में पीते थे, यहां कई बार छोड़ने की कोशिश की, नहीं छोड़ सके, लेकिन यहां सुनने के बाद, शिविर के बाद, अंदर से दिल आया कि बस अब मुझे छोड़ देनी है, सच्चे दिल से प्रभु से प्रार्थना करके लिख करके दिए, प्रभु आज मैं ये सिगरेट स्मोकिंग का दान देके जा रहा हूं। बहुत होते हैं अलग अलग दान दे, मैं क्रोध का दान, मैं अहंकार का दान, ईर्ष्या का दान देके जा रहा हूं, वो कभी हमें ही तकलीफ देती है। और ऐसा देखा गया है, सच्चे दिल से अगर कोई कमी को छोड़ के जाते हैं ना, वो कमी सदा काल के लिए छूट जाती है। केवल एक दो बात का ध्यान देना होता है कि आज जो कमी हमने छोड़ी उसको हमें किसी भी रीति से तीन सप्ताह तक उसका पालन करना है। शुरू में वो कमी खींचेगी, मानो स्मोक करते हैं, अगले दिन और ये दो दिन तीन दिन बहुत स्मोकिंग की इच्छा होगी, लेकिन ये सोच के रखें कि भाई तीन सप्ताह तक के लिए मुझे ये छोड़ा हमेशा के लिए छूट जाएगा। उसके अल्टरनेट के रूप में यहाँ पर होम्योपैथ डिपार्टमेंट से जो स्मोकिंग है, शराब है, कोई ऐसा ड्रग्स लेते हैं, हमारे यहाँ हॉस्पिटल में एक दवाई होम्योपैथिक की मिलती है, उससे फिर वो उन्हें जो तलब होती है, इच्छा होगी, वो जब वो इच्छा हो वो थोड़ी सी दवाई खा ले, होम्योपैथिक की गोलियां, बस उससे वो तलब खत्म, और फिर दो तीन सप्ताह बाद तो वो जीवन भर के लिए वो खत्म हो जाती है। तो इसीलिए निगोशिएशन, वैसे बिल्ली चूहे से डरती है, लेकिन इसमें दिखाया गया कैसे चूहे बिल्ली के बीच में निगोशिएशन, हमारे संस्कार जो है ना, पुराने संस्कार शेर बिल्ली की तरह जैसे सामने खड़े होते हैं, हम कैसे छोड़े, लेकिन अगर संकल्प में शक्ति होती है तो वो चीज छूट जाती है। और फिर यहाँ पर ना आप जब जाएंगे, कोई मनुष्य होता है, एक मनुष्य था जंगल में जा रहा था, तो आगे उसे भालू मिला, भालू सामने से आ रहा था, अब सामने कैसे जाए, वो उल्टा दौड़ने लगा वापस जिधर से आया था, भालू भी उसके पीछे पीछे जाने लगा, थोड़ी दूर जाकर उसे खाई जैसी दिखी। अब पीछे भालू आ रहा है, आगे खाई है, क्या करे, अगर वो ये सोचे खाई तो वही थोड़ी चौड़ी लगती है, चलो एक जंप में मैं बार नहीं कर सकता, चलो इसे दो तीन जंप में पार कर जाता हूं, क्या होगा, दो तीन जंप में तो पार करने से तो वो नीचे ही चला जाएगा। तो एक बार में पूरा जोर लगा के उस खाई को एक ही जंप में पार करना है। तो इसीलिए आपको यही देखना है, एक सिंगल जंप में ही आपको उसे कोई समस्या आए, हाफ हार्टेडली उस पर अटैक नहीं करो, समस्या आई है पूरे दिल दिमाग से शक्ति से उस समस्या को जीतने का प्रयास करो। कई बार हमारा अटेम्प्ट हाफ हार्टेड होता है, आधे दिल से हम करते हैं, इसलिए जीवन में सफलता नहीं मिलती है। आवश्यकता यह है कि जीवन में सफलता लेने के लिए एक ही जंप में हमें उसे पार करना है। कोई भी समस्या जीवन में आती है, ऐसा हम लक्ष्य रखें। अभी आप यहाँ आए हुए हैं ना, अभी जाएंगे दो दिन के बाद, तो कैसे जाएंगे, वहां जाके तो घर में जाके फिर से वही समस्याएं आएंगी, घर गृहस्थी की बातें, नौकरी धंधे की, कई प्रकार की प्रॉब्लम आएंगी। तो यहां पर आपको ये दो पंख मिल रहे हैं, कौन से दो पंख, ज्ञान और योग के जो लेक्चर हैं, ये सब हैं ज्ञान और योग, जो लाल लाइट में कमेंट्री होती है, प्रकाश होती है, और योग के बारे में जो बताया जाएगा। अभी आत्मा और परमात्मा तो आपने समझ लिया, अब योग की बातें आपको बताई जाएंगी कि योग की विधि क्या है, कैसे ईश्वर से संबंध जोड़े, योग के द्वारा क्या शक्तियां प्राप्त होती हैं, आदि आदि, तो वो है योग। तो ज्ञान और योग के दो पंख, जब पंख होते हैं, पक्षी के पंख होते हैं, तो वो क्या करता है, उड़ता है ना, तो ऐसे ही आप बुद्धि से ना यहां से उड़ने की कला सीखे। शरीर भले यहां है, बुद्धि से हम जितना ऊपर उठेंगे, उड़ना सीख जाएंगे, उतना क्या होगा, जब उड़ के कोई जाता है, नीचे पहाड़ है, नदी है, फ्लड है, कोई चीजें हैं, उन सब का कोई सारोकार नहीं, सड़क टूटी भी है, रेल लाइन टूटी है, वो तो हवाई जहाज से ऊपर से उड़ के चला जाएगा। ऐसे ही बुद्धि से उड़ना हमें आना चाहिए, और यहां राजयोग के द्वारा आप वही बात को सीख रहे हैं। और बस अब अंत में आपको क्या करना है, ये देखना है अपने, जब जाएंगे ना यहाँ, अब ये सुनते वक्त तो सब कुछ चीज बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन इतनी खुशी हमेशा जीवन में बनी रहे, और ये खुशी बनाए रखने के लिए आपको क्या करना है, कुछ भी जाने से पहले आप कई बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि थोड़ा मूड ऑफ होगा, प्रॉब्लम आएंगी, तो ये फिर से खुशनुमा जीवन के लिए आपको क्या करना है, यहां से ना कुछ थोड़ा सा ये ऑडियो वीडियो ये सब चीज आप ऑडियो कैसेट ले जाइए, सीडीज ले जाइए, पूरे लेक्चर के सीडीज सारे के सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो वो आप जाके लेक्चर वगैरह सुनेंगे, फिर से आपको यहां के दिन एकदम ताजा हो जाएंगे। और क्या, यहां से लिटरेचर ले जाइए, लिटरेचर का भी आपको बता देंगे, यहां भी लिटरेचर है और नीचे जाते हैं वहां भी है, कोई ना कोई चीजें, योग शिविर की कैसेट्स, गीतों की अच्छे अच्छे गीतों की कैसेट सीडी वगैरह आप लेके जाएंगे, तो क्या होगा, फिर आपका जीवन ऐसा ही खुशनुमा फिर हो जाएगा। रेगुलर कॉन्टेक्ट रखें लेटर्स के द्वारा, करस्पॉन्डेंस कोर्स भी होता है, कोई ऐसी जगह है भाई लोग जहां सेंटर वगैरह नहीं है तो करस्पॉन्डेंस कोर्स भी कर सकते हैं, वो भी यहां पर आपको उसका एड्रेस और वो सब मिल जाएगा। और यहां पर ना जीवन में एक बहुत आवश्यक कार्य है, वो कौन सा, नींद करना, सोना। सारा दिन भर कार्य करके मनुष्य थक जाता है तो सोता है, तो सोने की भी एक कला है। सोने से पहले क्या करिए, इसने क्या किया है, ये ऐसा खोपड़ी का ढक्कन ये खोल के और सारे दिन भर के जो थकान के विचार है, यूजलेस वेस्ट थॉट्स है, फ्रस्ट्रेशन वाले जो व्यर्थ विचार है, नकारात्मक विचार है, किसी के प्रति कोई दुख के देने के विचार है, उन सब विचारों को डस्टबिन में डाल करके उसके बाद आप ये सोच करके नींद करिए, हे प्रभु, भगवान को याद करिए, मेरा शरीर यहां बिस्तर पर विश्राम कर रहा है और मैं आत्मा आपकी गोदी में आके आराम कर रहा हूं। शरीर से अपने को डिटैच कर लीजिए, मैं आत्मा हूं और बस मैं आत्मा ऊपर जाके सो रही हूं और शरीर मेरा यहां बिस्तर पे। जब डिटैच हो जाता है ना तो बड़े सुख का अनुभव होता है। आप बहुत गर्मी से जा रहे हैं, एयर कंडीशन रूम में गए, वहां पर बड़ा ठंडी ठंडी हवा, बड़ा खुशी सुख अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि जब आप वहां गए, वहां का एटमॉस्फियर और बाहर का एटमॉस्फियर अलग अलग है, डिटैच है, इसीलिए अंदर पूरा ठंडा है, बाहर चाहे जितनी भी गर्मी हो अंदर बहुत आपको शांति की खुशी की अनुभूति होती है। ऐसे अपने को जब हम थोड़ी देर के लिए शरीर से डिटैच कर लेंगे, कोई आत्मा जाती नहीं है लेकिन संकल्प से जो वो है कॉन्शियसनेस, उसको हम विड्रॉ कर लेते हैं, योग के द्वारा बड़ा सहज संभव है, तो उसको विड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद जब आप सोएंगे तो 4 घंटे की भी नींद ऐसा लगेगा जैसे 8 घंटे की नींद कर ली, और बहुत आराम का अनुभव होगा आपको। और जब इतना आराम का अनुभव होगा तो बस फिर यही अनुभव होगा कि हाँ, जीवन के अंदर अगले दिन उठेंगे बिल्कुल फ्रेश। ये इसमें बताया गया है, जीवन के अंदर ना सुख शांति का अनुभव कम क्यों होता है। आत्मा, आपने सुनी ना आत्मा के कौन कौन से 7 गुण आज सुबह बताए होंगे ना, जरा बताओ कौन कौन से गुण थे, प्रेम, आनंद, सुख, शांति, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान, बस ये 7 गुण हैं। सब होते हुए भी आत्मा को इन गुणों का एहसास क्यों नहीं होता, सुख की जगह दुख का एहसास होता है, शांति की जगह अशांति का एहसास होता है, हर एक का नेगेटिविटी का एहसास होता है। क्यों? क्योंकि ये जो आज खजाने बताए गए हैं, सुख शांति आनंद पवित्रता प्रेम ज्ञान शक्ति, ये खजाने हमारे अंदर हैं, लेकिन है क्या, ये कहीं ना कहीं ये ताला या ये चेन कमजोर है। अब देख रहे हैं ना ये चेन, ये इस जगह ये कड़ी लड़ी टूटी है, ये खजाने ये काम क्रोध लोभ मोह रूपी विकार ये चोरी करके ले जा रहे हैं, और इस कारण से हमें सुख शांति का एहसास नहीं हो रहा है। तो आज आवश्यकता क्या है इनका एहसास करने की, कैसे, जो आपको बताया, जाने से पहले ना आप एक संकल्प करके जाइएगा, लिख करके वो बहन जी आपको बताएंगे कैसे लिखें। और ये अंतिम स्लाइड है वीडियो से पहले, ये इंस्पायरेशन कहते हैं गणपति बापा मौर्य कहते हैं ना, तो बस गणपति है विघ्न विनाशक, आप भी गणपति बन के जाओ, विघ्न विनाशक बन के जाओ। जीवन में विघ्न अगर आते हैं उन विघ्नों के सामने घुटने मत टेको, उन विघ्न को विनाश करके अपना रास्ता आगे बढ़ाते चलो। कैसे होगा? गणेश जी की 6 बातें मुख्य है। एक पहली बात है कि गणेश जी का बिग हेड, बड़ा सिर, बड़े विचारों का प्रतीक है। तो जब आप लौट के जाए तो छोटे विचारों को जीवन में स्थान मत देना, वो ऐसा करता है, उसने ऐसा क्यों किया, ये नहीं होना चाहिए था। बस अब यहां से जो महान विचार लेके जाए हैं उनमें ही आप रहे। दूसरा बताया है बड़े कान इस बात का सूचक है कि व्यर्थ की बात है ना निकाल दो। अगर कोई व्यर्थ की बात है, किसी ने इधर कही, इधर से सुनी, इधर से निकाल दिया, बड़े कान उस बात का सूचक है। तीसरी बात, जो नए विचार आपको मिले, कान सुनने के लिए है ना, यहां से कई नए विचार लेके जाएंगे आप, उन नए विचारों को धारण करें। छोटी आंख ध्यान का प्रतीक होती है, जब ध्यान करते हैं ना, योग करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपने देखा होगा आंख बंद होने लगती है। लेकिन आंख बंद करके कितना देर कार्य करेंगे? आंख खुली रहे हमारी, तो उस खुली आंख के लिए है ये अध खुली आंखें गणेश जी की दिखाई है। आप देख रहे हैं ना, थोड़ी आधी खुली हुई, और वो इस बात का प्रतीक है कर्म योग। कर्म करने का प्रतीक आंख खुली हुई, योग का प्रतीक आंखें आधी बंद आधी। तो कर्म भी कर रहे हैं और योग भी कर रहे हैं। जो गीता में कहा है कर्म योगी, उनके ये लक्षण है। क्या लक्षण है कर्म योगी के? उसे कहते हैं ना कि हर परिस्थिति में योगी समान रहता है। मान अपमान, निंदा स्तुति, दुख सुख, हानि लाभ, जीत हार, सब में उसकी स्थिति समान रहती है। बड़ा अच्छा कहा है किसी ने शायर ने इसके लिए, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। जीवन के अंदर तो जीवन के अंदर सदा जीत तो होगी नहीं, पर नियम ही है संसार का, हार जीत दुख सुख मान अपमान सब होगा। तो इसीलिए उन सब परिस्थितियों में हम समान रहे। और गणेश जी का क्या है? लंबी नाक इस बात का सूचक है क्रिएटिविटी का। नाक से ना भाई, जानवर आपने देखा होगा सूंघते सूंघते जाएंगे, जहां कुछ खाने का हुआ, शिकार हुआ, उनका पंजा मारा, खा लिया। तो ये क्रिएटिविटी का प्रतीक है लंबी नाक। हाथी का भी देखो सूंड, बस सूंड से ही बड़े बड़े पेड़ों को भी पकड़ के उखाड़ के फेंक देता है। ऐसे ये जो श्वास है ना, ज्ञान योग के साथ साथ कौन सा श्वास है हमारे जीवन का? नाक जो है श्वास का प्रतीक है, सांस लेने का, उमंग और उल्लास। आप जाए, कोई प्रॉब्लम आए, घर की आए, बस उस प्रॉब्लम को हैंडल भी करिए, लेकिन जीवन का उमंग उत्साह हमेशा कायम रखिए, जिससे नाक तो बड़ी बड़ी समस्याएं नाक सूंड में लपेट के हाथी फेंक देता है ना, तो वो उस रीति से आप उस समस्या को पार कर जाएंगे। छोटा मुंह जो है कम बोलने का प्रतीक, और लास्ट में बड़ा पेट जो है इस बात का प्रतीक है पावर ऑफ एडजस्टमेंट। बड़ा पेट है, जो ज्ञान सुना आपने और अभी सुन रहे हैं और अंत तक, तो इसको सुन करके इसको समाइए। जितना जितना इसे समाएंगे उतना उतना जीवन के अंदर आगे बढ़ते जाएंगे। और अब लास्ट में हाँ, ध्यान भी करिएगा और एक ये वीडियो छोटा सा ये देखिएगा कि किस प्रकार से एंड वीडियो है, जब जीवन खुशहाल कैसे आपका बन जाएगा। हम सब अगर इकट्ठा ध्यान से